निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप लोग विगत 5 दिनों से महाराज श्री के मुख से भागवत कथा सुन रहे हैं और अपेक्षा भी यही है कि महाराज श्री के मुख से सुना जाए, लेकिन इस बार अभी महाराज के स्नेहादेश से मैं कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपा करके जो भागवत के शब्द होंगे वाक्य होंगे उसको आप ग्रहण कीजिएगा और कुछ अन्यथा बातें हो सकती है जिसको आप क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। तो अभी हम लोग 5 दिनों में महाराज श्री के मुख से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का श्रवण किए, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्रवण किए, जिसमें नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी के समक्ष 6 प्रश्नों को रखा गया है। ये 6 प्रश्न वास्तव में श्रीमद् भागवतम के आधारभूत हैं। इसी के उत्तर में सूत गोस्वामी ने समस्त भागवत का प्रवचन किया है। तो आप लोग जो इसको सुने हैं उसको फिर से अपने मन में स्मरण करें। सर्वप्रथम सौनक जी अपने सभा में उपस्थित सूत गोस्वामी का सत्कार किए, उचित आसन दिए और इसके बाद बड़ा ही विनीत भाव से उनके चरणों में कुछ प्रश्न निवेदन किए जो इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न में सौनक जी पूछते हैं कि जीवों का एकांतिक श्रेय क्या है, लोगों का एकांतिक श्रेय जिसको महाराज से साधन बतलाए। प्रथम प्रश्न में सौनक जी ने पूछा कि लोगों का वास्तविक श्रेय क्या है, एकांतिक श्रेय, असली श्रेय। श्रेय के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन इसमें साधन के रूप में प्रश्न कर रहे हैं, क्या करने से जीव प्रसन्न हो सकता है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि आप ऐसे साधन को बतलाइए, तत्त तत्तान जसा जुष्मन भवता यद विनिश्चितम, पुंसाम एकांतत श्रेय तन्न संसितु अर्हसि। कह रहे हैं कि आपने तत्र तत्र का अर्थ जो शास्त्रों में, पुराणों में और गुरुजनों के उपदेशों के द्वारा जो कुछ आपने श्रवण किया है और श्रवण के अध्ययन के बाद जो आपने निश्चय किया है वह बतलाइए। और इसके साथ कहते हैं कि अंजसा आसान साधन बतलाइए जिसको सभी लोग कर सकें, जो आपने शास्त्रों में पढ़ कर समझ कर निर्णय लिया है कि जीवों का हित किस साधन के करने से हो सकता है, वास्तविक एकांतिक श्रेय क्या है, एकमात्र साधन जिसको करने से व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त कर सकता है वह क्या है। और दूसरे प्रश्न में श्रेय के विषय में निश्चय प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें साध्य के विषय में प्रश्न है, जिससे आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए वह शास्त्रों का सारभूत क्या है। अतः साधुत यत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न सद्धानानाम जिनात्मा संप्रसिद्धते। अब आप अपने बुद्धि के द्वारा जो निश्चय किया है उसको बतलाइए, जो शास्त्रों का सार तत्व है जिससे आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए। सभी शास्त्रों का सारभूत वस्तु क्या है, साध्य क्या है, किनका भजन करना चाहिए। इसमें साधन और साध्य, साधन का अर्थ होता है उपाय, जिस उपाय को करके व्यक्ति सम्यक रूप से प्रसन्नता लाभ कर सके, यह प्रश्न पहला प्रश्न है। और दूसरे में श्रेय के विषय में करते हैं, श्रेय यहाँ साध्य मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण। और दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, वास्तव में भगवान ही सभी व्यक्तियों का एकमात्र आराध्य है और उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनकी आराधना की जाती है भक्ति के द्वारा। दोनों का उत्तर है भक्ति, इसको आगे सूत्र गोस्वामी बतलाएंगे। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में पूछते हैं शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत जिसका पालन करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके, और दूसरे में भी वही बात पूछ रहे हैं जो शास्त्रों का असली चीज है माने भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में बतलाइए। और फिर तीसरे प्रश्न में भी उसी बात को पूछ रहे हैं। सब मिला करके सौनक जी का लक्ष्य है भगवान को जानना और समाज के सामने भगवान को प्रस्तुत करना। तो तीसरे प्रश्न में पूछते हैं कि किस उद्देश्य से स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से अवतार लिए, वसुदेव के पुत्र के रूप में किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से आए। ऐसे भगवान के अवतार के कारण शास्त्रों में है, लेकिन भगवान आते हैं अवतार लेते हैं अपने नित्य धाम से, इस प्राकृत जगत में आते हैं तो इसको अवतार कहते हैं, अपने निजी धाम से इस प्राकृत जगत में आने को अवतार कहते हैं। तो भगवान आते हैं और सर्व विदित बात है कि भगवान के अवतार के कारण है धर्म की स्थापना करना, साधु जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना, यह भगवान के मोटा मोटी अवतार का कारण है। लेकिन यहाँ स्पेशली भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं कि भगवान जो भक्तों के एकमात्र स्वामी हैं, उनके पालन करता है सात्वतम पति, भगवान किस कारण से, किस उद्देश्य से देवकी के गर्भ से अवतार लिए। नंद जसोदा के पुत्र हुए वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए, उनका क्या लक्ष्य है। भगवान के अनेक अवतार अंश और कला से होते हैं जो जगत का हित करते हैं, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और साधुओं की रक्षा हो जाती है। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, भगवान क्यों आए, श्री कृष्ण क्यों आए इस जगत में, क्या लक्ष्य है। और चौथे प्रश्न में पूछते हैं कि ब्रह्मांड में, इस जगत में भगवान अवतार लेकर क्या क्या किए। चौथा और तीसरा और चौथा प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, दोनों कृष्ण के विषय में है, लेकिन एक में है कि उनका उद्देश्य क्या था इस जगत में आने का, और चौथे में है वो आए तो आकर क्या क्या अद्भुत लीलाएं किए, उसको सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। और इसके साथ ही पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण के अन्य अवतार, कृष्णेतर दूसरे अवतार, नृसिंह, बराह, कश्यप आदि विभिन्न अवतारों में भगवान क्या क्या किए। और अंतिम प्रश्न, भगवान के अंतर्हित हो जाने के बाद, चले जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन कर रहा है या करेगा आगे। इस प्रकार से छह प्रश्न है और इन छह प्रश्नों की व्याख्या हम लोग पांच दिनों से सुने, इसमें बहुत सुंदर व्याख्या महाराज श्री किए। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के स्पेशल कारण को बतलाए, जैसा हम लोग सुने कि भगवान अपने नित्य धाम में वात्सल्य रस का स्वादन नहीं कर पाते हैं, जन्म लेना और माता पिता के स्नेह में पलना और उनके स्नेह का स्वादन करना, यह भगवान अपने नित्य धाम गोलोक में नहीं कर पाते हैं, नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, यदि वहाँ उनके नित्य माता पिता नंद यशोदा हैं, लेकिन जन्म लेकर माँ के स्तन पान करना और उनके स्नेह का स्वादन करना यह नहीं कर पाते हैं। तो इसका विशिष्ट रूप से स्वादन करने के लिए भगवान आए, और इसके साथ साथ अपने सखाओं के प्रेम का स्वादन करना और मुख्य रूप से गोपियों के साथ जो उनकी नित्य प्रेयसियां हैं, जिनको परखिया भाव में स्वादन करने के लिए भगवान आए। तो इन सारी बातों को हम लोग सुने हैं विस्तार से, और मुख्य बात है कि भगवान इस जगत में आते हैं और उस समय, जिस समय भगवान अवतरित रहते हैं इस जगत में, तो लोग भगवान का दर्शन करके, उनके विविध लीलाओं की चर्चा करके, रोज कुछ न कुछ घटना, कुछ न कुछ लीला हुआ ही करती है, जिसको जगत में बहुत व्यापक रूप से प्रचार होता है और उसको लोग सुनते हैं, देखते हैं, आस्वादन करते हैं। यही वास्तव में जीव का वास्तविक धर्म है। तो यहाँ कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक भाव यह छिपा हुआ है कि जिस समय भगवान थे उस समय धर्म की रक्षा सम्यक रूप से हो रहा था, अब चले गए तो कैसे होगा या हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जीव का, जो आगे वर्णन करेंगे सूत गोस्वामी, कि जीव का वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति करना, जो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। तो भगवान की भक्ति करना, भक्ति का अर्थ है भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का स्मरण करना, प्रणाम करना, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखना इत्यादि। इस प्रकार भक्ति, जो नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो यह जो भक्ति के प्रकार है, मुख्य रूप से भगवान के विषय में सुनना और वर्णन करना, ये सब जीव का वास्तविक धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो उस समय जब भगवान अवतार लेकर इस जगत में उपस्थित थे तो लोग भगवान का दर्शन करते थे आसानी से, भगवान सुलभ थे, उनका दर्शन करके आनंदित होते थे। चित्त की वास्तविक प्रसन्नता है भगवान को दर्शन करने में, भगवान के विषय में सुनने में, भगवान का वर्णन करने में। तो उस समय यह सुलभ था सब जगह, जहां भगवान उपस्थित थे वहां, और जहां नहीं है तो उनके विषय में चर्चा करके लोग आनंदित रहते थे। एक बहुत बड़ा सुख है। से भागवत में अनेक घटनाएं हैं। हस्तिनापुर से भगवान जब द्वारिका जा रहे थे तो उनको देख करके हस्तिनापुर की स्त्रियां जो भगवान के सामने नहीं आ सकती थी, कुरुकुल की जो बहू थी जो पर्दे के अंदर रहती थी, वो अपने महल से भगवान का दर्शन की और आपस में चर्चा करने लगी। जिसको सूत गोस्वामी कहते हैं कि उनकी चर्चा साधारण चर्चा नहीं थी, सर्व श्रुति मनोहर, यह वेदों के मन को भी हरण करने वाले, या सुनने वाले जितने शब्द हैं, जिनके पास सुनने की क्षमता है, कान है, उनके कान को सबसे प्रिय लगने वाली चर्चाएं कर रही थी। उसमें क्या चर्चा कर रही थी, कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रही थी आपस में। ये सखी, यह वही पुरुष है जो सृष्टि के पूर्व एकमात्र यही था, और इनके द्वारा, इनके शक्तियों से विविध प्रकार की सृष्टि हुई है, और इसके बाद आगे भी यह परम पावन अवतार जो इस श्री कृष्ण के रूप में इस जगत में प्राप्त हुआ है, वो जहां कहीं भी रहते हैं सबको कृतार्थ कर देते हैं। इन्होंने जन्म लेकर जदकुल को पावन किया, पावन ही नहीं सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम पवित्रता प्राप्त किया, जस बढ़ाया और ब्रजमंडल में घूम घूम कर ब्रजभूमि को परम पावन, परम पवित्र बनाया इत्यादि। इस प्रकार से कृष्ण के गुणों को चर्चा करके, उनका दर्शन करके लोग आनंदित रहते थे। और राजसूय जग में जब भगवान के रूप का दर्शन लोग कर रहे थे, उस सभा में बैठे हुए लोग, तो सबने जब भगवान को निहारा तो आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि वास्तव में ब्रह्मा के पास किसी रूप को बनाने की जितनी कला है, इसी पुरुष को बनाने में खर्च हो चुका है। यद्यपि भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है, अप्राकृत अलौकिक पुरुष हैं, फिर भी वहां बैठे उपस्थित लोग भगवान को देख कर यह विचार कर रहे थे, इससे सुंदर अब कोई नहीं हो सकता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्णन है कि उद्धव जी वर्णन करते हैं कि जब लोग भगवान के भुवन पावन सौंदर्य को देखते थे, अर्जुन के विपक्ष में रहने वाले लोग, तो देखते ही रह जाते थे, भूल जाते थे कि मुझे युद्ध करना है। और क्योंकि अर्जुन के रथ का संचालन करने वाले भगवान थे सारथी के रूप में, तो अर्जुन के देखने के पहले सारथी का दर्शन हो जाता, और सारथी मंद मंद मुस्कुराते हुए उन वीरों के तरफ निहार रहे थे, और उनके सौंदर्य को देखकर योद्धा लोग मुग्ध हो जाते थे। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन से ही वो पवित्र हो जाते हैं, और फिर अर्जुन के पवित्र बाण जब उनके शरीर पर लगता तो परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह उनकी धर्म की रक्षा उस समय हो रही, धर्म की रक्षा मतलब कर्तव्य। जीव का वास्तविक कर्तव्य है भगवान को देखना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना इत्यादि। तो उस समय यह उपलब्ध था, लेकिन जब भगवान चले गए तो अब कैसे इसका पालन होगा। तो इसके उत्तर में आगे बताएंगे कि भगवान के जाने के बाद भगवान अपने आप को सब तरह से सम्यक रूप से श्रीमद् भागवतम में स्थापित किया है। और जो व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है, सुनता है, वर्णन करता है, मनन करता है, वो भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है और उसकी धर्म की रक्षा हो जाती है, कर्तव्य की रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार आगे दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी उत्तर देंगे। व्यास उवाच, इति संप्रश्न संघृष्टो विप्राणाम रौम हर्षणी प्रति पूज्य वचस्ते साम प्रवक्तुम उपचक्र में। श्रीमद भागवतम के रचयिता व्यास देव कहते हैं, वास्तव में कई लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत कहाँ से प्रारंभ हुआ है। मुख्य रूप से कई बार संदीप इस प्रश्न को करते रहते हैं, आज ही कह रहे थे कि कहाँ से भागवत की रचना हुई, कहाँ से माना जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि भागवत के एक एक अक्षर भागवत है, और हम लोगों को जो भागवत प्राप्त हुआ है वो नैमिषारण्य के सीडी से पुस्तक तैयार किया गया है, जहाँ सौनक जी प्रश्न किए हैं और उनके उत्तर सूत गोस्वामी दे रहे हैं, और इसको संग्रह करके सूत व्यास जी हम लोगों के सामने उपस्थित किए हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न होता है कि व्यास जी वेद पुराण की रचना करके अपने विभिन्न शिष्यों को पढ़ाए और श्रीमद् भागवतम की रचना करके चाह रहे थे कि किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए, और उनके दृष्टि में कोई योग्य मिल नहीं रहा था, तो भगवान से प्रार्थना करके सुखदेव गोस्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। और भागवतम को देने के लिए बड़े उतावले थे, ललाई थे, तो फिर प्रश्न होता है कि वो कौन सा भागवत था जिसको देना चाहते थे और उसको ले करके सुखदेव गोस्वामी प्रवचन किए, बाद में व्याख्या किए। तो यही भागवत जिसको यहाँ व्यास जी प्रस्तुत कर रहे हैं उसको सुखदेव गोस्वामी ग्रहण किए, फिर महाराज परीक्षित की सभा में प्रवचन किए, और उस कथा को सूत गोस्वामी रिले कर रहे हैं सीधे, जैसे रेडियो से रिले किया जाता है विभिन्न जगह के समाचार को। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को रिले किए हैं और यहाँ से पुस्तक तैयार हुआ है। तो व्यास जी यहाँ बोलते हैं, रचना करने वाले व्यास देव, कि इस प्रकार जब ब्राह्मणों का प्रश्न सुने, सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुने, सूत गोस्वामी रोम हर्षणी बहुत प्रसन्न हुए। इति संप्रश्न संघृष्ट, सम्यक प्रश्न सुनकर, जो प्रश्न करना चाहिए वैसा प्रश्न सुन करके सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। और सूत गोस्वामी को यहाँ रोम हर्षणी कहा गया है, रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। महाराज श्री बतलाए कि रोमहर्षणी यद्यपि इनका अपना एक स्पेशल नाम था उग्रश्रवा, लेकिन रोमहर्षण जी के पुत्र होने के कारण इनको रोमहर्षणी कहा गया। और इनका महाराज श्री बतलाए कि ये श्री बलराम जी के प्रसाद हैं, श्री बलराम प्रसाद, क्योंकि इनके पिता रोमहर्षण जी को बलराम जी शिष्टाचार का पालन नहीं करने के कारण वध कर दिए थे। तो फिर ऋषियों के आग्रह पर उनके पुत्र को सर्वशक्ति संपन्न करके कथा कहने के लिए प्रसाद के रूप में दिए, तो वही रोमहर्षण जी के पुत्र रोमहर्षणी सूत, जिनका नाम उग्रसवा है, सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, सम्यक रूप से प्रसन्न हुए, और उनके प्रश्नों का अभिनंदन करते हुए प्रति पूजा वचस्ते साम उनके बाणी का, उनके प्रश्नों का अभिनंदन किए और इस प्रकार बोलने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रवक्तों मुख चक्र में प्रवचन करने के लिए तैयार हो गए। तो सूत गोस्वामी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में महाराज श्री बतलाए, इस मंगलाचरण में भगवान को, गुरु को, भगवान को, इष्ट को नमस्कार किया जाता है। तो और मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें किस विषय का वर्णन करना है वो विषय वस्तु भी दी जाती है संक्षेप में। तो यहाँ सूत गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरु महाराज को। यम प्रवजन तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। सूत गोस्वामी अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी के गुणों का स्मरण करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी जब प्रश्न सुने ऋषियों के प्रश्न, तो उनके मन में भागवत का प्रवचन करने की इच्छा हुई, क्योंकि उनके प्रश्न का सम्यक उत्तर भागवत के द्वारा ही दिया जा सकता है। और यह श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी प्राप्त किए थे सुखदेव गोस्वामी से, इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि महाराज परीक्षित की सभा में जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित हुए। महाराज परीक्षित की सभा में केवल परीक्षित महाराज ही कथा नहीं सुने, दुनिया के ब्रह्मांड के जितने विशिष्ट लोग थे वहां उपस्थित थे। एक से एक ऋषि मुनि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सभी लोग उपस्थित थे, क्योंकि महाराज परीक्षित बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। और अचानक उनको इस प्रकार श्राप की घटना सुनकर सभी लोग उपस्थित हुए महाराज का मदद करने के लिए। तो वहां जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन करने लगे, तो बहुत लोगों को श्रवण करने का लाभ मिला, जिसमें सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे, यही रोमहर्षणी सूत। तो सुखदेव गोस्वामी स्पेशली सूत गोस्वामी को निकट बुला करके बैठाए, और पूरा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने के बाद भविष्यवाणी भी किए कि आगे भविष्य में नैमिषारण्य में ऋषियों के समक्ष यह सूत प्रवचन करेगा इस भागवत का। तो जब ऋषि लोग प्रश्न किए, तो उनके प्रश्न को सुन करके सूत गोस्वामी को वह घटना भी याद आ गई कि सुखदेव गोस्वामी कहे थे, वह दिन लगता है आज उपस्थित हो गया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके गुणों को स्मरण करते हुए कि जो अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रह गए संसार से भयभीत होकर, संसार में जाने पर माया में फंसना पड़ेगा, और जब जन्म लिए व्यास जी के आग्रह से, भगवान के आश्वासन से, जब सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से जन्म लिए, तो जन्म लेते ही चल दिए माँ को छोड़कर, घर से निकल पड़े वन की ओर। तो उस समय जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, इस गुण का स्मरण कर रहे हैं, चल दिए, तो व्यास जी तो चकित हो गए, अरे यह क्या हुआ, जिसको बहुत तपस्या के बाद प्राप्त किया भागवत पढ़ाने के लिए, वो जन्म लेते ही चल दिया, अभी इनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, चल दिए। तो व्यास जी एकदम विरह से कातर होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे, चल दिए, व्यास जी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, और हा पुत्र, हे पुत्र, रुको रुको कहते हुए चल रहे हैं। तो वन में जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और पीछे से व्यास जी जोर से पुकार रहे हैं, बेटा रुको रुको, हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरो भिने दु। जब व्यास जी बोल रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी तो सुन ही नहीं रहे हैं, चल लिए अपने मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन व्यास जी के इस प्रार्थना को वृक्ष लोग उतर दे रहे हैं, वहां पेड़ उतर दे रहे हैं, तरो भिने दु, वृक्ष उतर दे रहा है। वृक्ष उतर दे रहे हैं कि मतलब वृक्ष बतला रहे हैं कि अरे आप इस तरह से पुत्र में आसक्त हैं, हम लोगों से शिक्षा लीजिए, हमको पुत्र परिवार में कोई आसक्ति नहीं है। मानो वृक्षों ने उपहास पूर्वक व्यास देव का उत्तर दे रहे हैं। तो इस गुण को स्मरण कर रहे हैं कि पिता के वाक्य को सुन नहीं रहे हैं, चल रहे हैं अपने मस्ती में। और वही सुखदेव गोस्वामी जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका आदर करते हैं, ऐसे मननशील महात्माओं के जो गुरु हैं, आगे का श्लोक हम बतलाएंगे, तो उस सुखदेव गोस्वामी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, तो मैं प्रणाम करता हूँ उस सुखदेव गोस्वामी के चरणों में जो अपने पिता माता या संसार का परवाह न करते हुए चल दिए। और इसके साथ साथ आगे कहते हैं कि वह सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किए उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये अब दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के विशेषताओं का वर्णन करते हुए और धारण करने वाले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में कम अध्यात्म दीप मतीर्ति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनु मुपयामि गुरु मुनि नाम। इसमें सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को नमन करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करुणा से भर कर किया, उस व्यास पुत्र जो मननशील महात्माओं मुनियों के गुरु हैं उनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। तो इसके साथ श्रीमद् भागवतम की विशेषता का वर्णन करते हैं। यह स्वानुभावम, स्वानुभावम का अर्थ है स्वरूप प्रकाशक, जो अनुभव का प्रकाशन करता है, भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है, ऐसा ग्रंथ जो सुखदेव गोस्वामी कृपा करके प्रवचन किए इसका वर्णन कर रहे हैं। स्वानुभावम, स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इस दासता को, इस दासत्व को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। इसको सुनने के बाद व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होता है, हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ कहते हैं अखिल श्रुति सारमेकम, जो ऋषियों ने प्रश्न किया है उस प्रश्न के अनुरूप श्रीमद् भागवतम को उचित बतलाते हुए कि श्रीमद् भागवतम ही उचित उत्तर है, कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों का अखिल श्रुति सारम, समस्त शास्त्रों का, समस्त वेद पुराणों का जो सार तत्व है श्रीमद् भागवतम, सार है, इसको मंगलाचरण में कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह निगम का, वेदों का पका हुआ फल है, सार तत्व है श्रीमद् भागवतम। कहते हैं कि यह समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का, पुराणों का सार तत्व है। और इसके बाद अध्यात्म दीप एकम श्रुतिसारम और एकम, एकम का अर्थ है अद्वितीय, जिसके समान और कोई शास्त्र नहीं है, अद्वितीय कोई वेद पुराण शास्त्र अनेक है, जिसको रच करके जिसकी रचना करके व्यास देव स्वयं संतुष्ट नहीं हुए। अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में असंतुष्ट अवस्था में बैठे रहे, बड़ा निराश अवस्था में सोच रहे थे कि हमने वेदों की रचना किया, शास्त्रों की पुराणों की, लेकिन जिस प्रकार जीवों का हित होना चाहिए इसे हो नहीं रहा है। तो इस पर विचार करके बड़ा चिंतित थे। उस समय देवर्षि नारद जी उपस्थित होकर के भगवान कृष्ण के गुणों से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए प्रेरित किए, भक्ति का महात्म बतलाए, अपने पूर्व जीवन की घटनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए और इसके बाद व्यास जी श्रीमद् भागवतम की रचना करने का निर्णय लिए, जिसमें समस्त शास्त्रों का सार संग्रह किया गया है, निचोड़ असली चीज। तो और रचना करने के बाद व्यास जी अनुभव किए कि यह अद्वितीय ग्रंथ है, यह श्रीमद् भागवतम जहां उपस्थित है तो अन्य शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं, तो यह अद्वितीय ग्रंथ है। और अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीप का अर्थ है अप्राकृत चिन्मय वस्तु को प्रकाशित करने वाला टार्च लाइट, यह श्रीमद् भागवतम ऐसा अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ है जो इस प्राकृत जगत से भिन्न अप्राकृत स्वरूप भगवान के दिव्य लीलाओं को गुणों को प्रकाशित करता है। इस जगत के जो काम जनित व्यापार है इससे बिल्कुल भिन्न दिव्य भगवत स्वरूप का निरूपण करता है। तो अध्यात्म के अप्राकृत स्वरूप के प्रति यह दीप है, टार्च उसको प्रकाशित करता रहता है। इस तरह से यह अति तितीर्षतम तमोंधम, इस संसार में जो लोग पड़े हुए हैं संसारिणम, संसारिक जीवों के प्रति, जो संसार के घोर अज्ञान में पड़े हुए लोगों के प्रति जो इससे ऊपर उठना चाहते हैं, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति इन विशेषताओं से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम को जो पुराण गुह्यम, पुराण गुह्यम का अर्थ है जो वेद पुराण के गुह्य रहस्यमय सिद्धांत को बतलाता है, जो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करता है। भगवान की भक्ति वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रहस्यमय वस्तु है, जिसको भगवान अपने श्री मुख से भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं गोपनीय बात को आपके सामने बतलाने जा रहा हूं, जो सब जगह जनरल पब्लिक में प्रवचन करने लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, सखा हो, इसलिए मैं इसको बतला रहा हूं। मेरे हृदय में जो तुम्हारे कल्याण के लिए, हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है रहस्यमय, उसको मैं बतला रहा हूं। तो उसमें क्या बतलाए कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, और यह काम करोगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, मैं इसको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मनमना हो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे पास आओगे, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, और क्योंकि तू मेरा प्रिय है, प्रिय से कोई छल कपट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यह परम गोपनीय बात है, और भगवान की कृपा से अपने मित्र के समक्ष जो प्रवचन किए वह हम लोगों को भी प्राप्त हो गया व्यास जी की कृपा से। तो सबसे गोपनीय बात है भगवान की भक्ति, भगवान में मन लगाना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में वर्णन करना, उनके गुणों लीलाओं का चिंतन करना इत्यादि। तो इस तरह से यह श्रीमद् भागवतम पुराण गुह्यम पुराणों के रहस्यमय गोपनीय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। यह पुराणों के गोपनीय रहस्य को करुणा पूर्वक दया से भर करके सुखदेव गोस्वामी प्रवचन किए। वास्तव में महापुरुषों की विशेष विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से दो विशेषता है। एक तो अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए यत्नशील होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं स्वयं, और फिर दूसरों को भी भक्ति में लगाना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर करुणा है। भगवान करुणा पुरुषोत्तम के भक्त होते हैं, इसलिए वो भगवान का गुण भक्तों के अंदर भी होता है। तो इस करुणा में भर करके प्रवचन करते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं और इसके साथ साथ प्रचार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में यहाँ हरिदास ठाकुर के समक्ष सनातन गोस्वामी वर्णन किए हैं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में सनातन गोस्वामी की महिमा का वर्णन करते हुए उनको रथ के नीचे अपना शरीर देने के निर्णय का निषेध किए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी क्रम में सनातन गोस्वामी के प्रति महाप्रभु बोले कि सनातन तुम स्वतंत्र नहीं हो अपने शरीर को इस तरह से हत्या करने के लिए, क्योंकि यह शरीर मेरा है, मेरा निजी धन है। जिस दिन तुमने आत्मसमर्पण किया मेरे चरणों में, उसी दिन से यह शरीर मेरा हो गया है और तुम्हारा कर्तव्य नहीं है इस प्रकार इसको बर्बाद करने का। तो बहुत वर्णन किए, मैं इस शरीर से विशेष काम करना चाहता हूँ, जो काम अपने इस निजी शरीर से नहीं कर सकता वह सनातन के शरीर से करना है। इस प्रकार महाप्रभु सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करके जब चले गए निषेध करके, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आज मैं समझा कि आपका कितना महत्व है। महाप्रभु जिस शरीर को अपना निजी धन कह रहे हैं वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के बातों को काटते हुए उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, जिस काम को करने के लिए महाप्रभु इस जगत में आए हैं वह काम तो आप कर रहे हैं। वास्तव में आप महापुरुष हैं, जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी क्रम में कहते हैं आचार करे न केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार, आचार प्रचार यही दो कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्ज। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी महान पुरुषों का सबसे बड़ी विशेषता है कि वे आचरण करते हैं और उस आचरण का प्रचार भी करते हैं। भक्ति का आचरण अपने जीवन में करते हैं और करुणा से भर करके दूसरों को भी सिखाते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने भजन में सीरियस होते हैं, आचरण करते हैं, दूसरों को प्रीचिंग करने में इंटरेस्ट नहीं होता, और कुछ लोगों को प्रचार करने में खूब इंटरेस्ट होता है, अपना भजन कम हो या कुछ इस पर गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन आपके अंदर दोनों चीज है, आप आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आचार प्रचार यही दो कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्ज, दोनों काम कर रहे हैं। आप जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं, महान हैं और सबके गुरु हैं। तो यहाँ सूत गोस्वामी इनकी करुणा का स्मरण करते हुए प्रणाम कर रहे हैं कि मैं व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहा हूं जो करुणा से भर करके इस भागवतम पुराण का प्रवचन किए। यह बहुत बड़ा कार्य है भागवत को जगत में देना। इस विशेष गुण का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। और फिर उनकी विशेषता बतलाते हैं कि ये बड़े बड़े मननशील महात्माओं के गुरु हैं, जिनका चित्त केवल भगवान में लगा रहता है, भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं। ऐसे मननशील महात्माओं के भी जो गुरु हैं, उस सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित की सभा में उपस्थित हुए तो वहां उपस्थित बड़े बड़े लोग खड़ा होकर अभिनंदन किया और सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया कि यही व्यक्ति महाराज परीक्षित के जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं, यही गुरु हैं। और उनको सर्वश्रेष्ठ आसन देकर महाराज परीक्षित सम्मान पूर्वक प्रश्न किए। तो उस सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करके और फिर एक परंपरा को स्थापित करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। एक सिद्धांत एक पद्धति बतलाते हैं, भगवान अधोक्षज की भक्ति अहेतुकी भक्ति करना जीव का परोधर्म परम धर्म है। पराधर्म का मतलब श्रेष्ठ धर्म, परम धर्म, और परम ने अप्राकृत धर्म। जीव अप्राकृत है, इस प्रकृति में पढ़कर देह के बंधन में आ गया है और देह के अनुसार उसे कुछ कर्तव्य हो गया है। तो यह जो स्थिति है देह के अंदर पढ़कर कुछ कर्तव्य का पालन करना, इसको अवर धर्म कहते हैं, यह निम्न धर्म है। असली धर्म जीव का है भगवान की भक्ति, लेकिन शरीर के बंधन में आ करके शरीर के धर्मों से प्रभावित होना पड़ता है। जो शरीर का धर्म है खाना भोजन करना, कपड़ा पहनना, शरीर की रक्षा करना, इसके लिए भी कुछ कर्तव्य हो जाता है। और शास्त्रों में इस देह धर्म को नैमित्तिक धर्म कहते हैं, नित्य धर्म जीव का धर्म है। जैसे जीव नित्य है वैसे उसका कर्तव्य भी नित्य है। और नित्य का अर्थ है परमानेंट, अनादि काल से अनंत काल तक जिस तरह जीव की स्थिति है उसी प्रकार उसका धर्म भी है। सभी काल में, सभी देश में, सभी स्थान में वो अपने धर्म से युक्त रहता है। कहीं भी किसी भी अवस्था में उसका धर्म है भगवान की भक्ति, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे देवता के शरीर में, या कहीं भी, उसको इस धर्म का पालन करना ही चाहिए। तो यह जीव का परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म। और यह इसी धर्म को जैव धर्म या भगवत धर्म, भागवत धर्म, नित्य धर्म, सनातन धर्म, कई शब्दों से कहा गया है, सब इसके पर्यायवाची शब्द है। नित्य धर्म जिसको कहा जाता है सनातन धर्म, सनातन और नित्य का एक ही अर्थ है, जो सभी काल में रहे, जो किसी भी अवस्था में नष्ट न हो सके, उसको नित्य कहते हैं, परमानेंट। तो यह परमानेंट जीव का धर्म है भगवान की भक्ति, अधोक्षज की भक्ति। अधोक्षज, यहाँ कृष्ण का नाम अधोक्षज कहा गया है, जो इंद्रियां जिनको पकड़ने में पीछे रह जाती है। अध अक्षज, अक्षज माने इंद्रिय जनित ज्ञान, और अधा मतलब नीचे, पीछे पड़ जाती है, रह जाती है। जो भगवान को समझने में प्राकृत इंद्रियां काम नहीं कर पाती, उस भगवान अलौकिक अद्वितीय पुरुष को अधोक्षज कहते हैं। तो अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति जीव जब करता है तो इस प्राकृत इंद्रियों से भगवान का अनुभव करने लगता है। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे चुंबक, शक्तिशाली चुंबक के निकट रुपए का सिक्का ले जाते हैं पास में, तो चुंबक उस सिक्के को पकड़ लेता है अपने आकर्षण में खींच लेता है और फिर चुंबक के संपर्क में आ करके वह सीका में भी चुंबकत्व तो आ जाता है और दूसरे सीका को सीका के निकट ले जाते हैं तो उसे खींच लेता है। यद्यपि वो लोहे के सीका में चुंबक नहीं है लेकिन चुंबक के संपर्क के कारण उसमें चुंबकत्व तो शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार भगवान अलौकिक पुरुष अप्राकृत पुरुष भगवान कृष्ण के गुणों का जब व्यक्ति श्रवण करता है वर्णन करता है स्मरण करता है तो ये प्राकृत इंद्रियां भी अप्राकृत हो जाती हैं क्योंकि भगवान अप्राकृत हैं, उनके गुण अप्राकृत हैं, उनकी लीला कथा उनका नाम अप्राकृत है और उस अप्राकृत शब्दों को जब इंद्रिय के संपर्क इंद्रिय को उनके नामों के प्रति उनके गुणों के प्रति संपर्क में लाते हैं तो इंद्रियां भी अप्राकृत हो जाती है, कान भी अप्राकृत हो जाता है गुण सुनकर और जीभ अप्राकृत हो जाती है भगवान के गुणों का वर्णन करके नाम का वर्णन करके। तो इस प्रकार जब व्यक्ति परम धर्म में अपने नित्य धर्म में युक्त हो जाता है लग जाता है तो इससे आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है, एकदम जो चाहिए जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति कर लेता है। जिस आनंद को खोजने के लिए अज्ञान बस वह इस प्राकृत जगत में भटक रहा है उस आनंद को प्राप्त कर लेता है जब भगवान की भक्ति करता है। अनजान बस हम लोग सभी लोग भले अज्ञान में है लेकिन खोज रहे हैं उसी सुख स्वरूप भगवान को क्योंकि हम उसी अधोक्षज सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश हैं और जिस प्रकार भगवान में सत चित और आनंद है उनका अंश होने के कारण हम हमारे अंदर भी अणु रूप में है और हम उसी आनंद में परमानेंट आनंद में आनंदित रहना चाहते हैं लेकिन अज्ञान बस अनजान बस संसार में इस आनंद को खोज रहे हैं, स्त्री में और संसार के सुख वैभव में भोजन में दर्शन में जहां तहां खोज रहे हैं कि वहां ये दृश्य देह का सुखी हो जाएंगे ये शब्द सुनकर सुखी हो जाएंगे ये कर लेंगे इसमें आनंद नहीं मिल पाता है। तो जब हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब असली आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, सम्यक रूप से प्रसन्नता लाभ कर लेते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि भगवान की भक्ति अधोक्षज की भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान अधोक्षज की नीचे के श्लोक में वासुदेव का मतलब यह है कि जो अधोक्षज है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं वही वासुदेव है वही श्री कृष्ण है। उस अधोक्षज वासुदेव की भक्ति जब व्यक्ति करता है उचित ढंग से तो बहुत जल्दी इस संसार के विषयों से वैराग्य हो जाता है और भगवान के विषय में अपने कर्तव्य के विषय में ज्ञान हो जाता है बहुत जल्दी। और सब वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम्। तो भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग में लग करके वह शीघ्र ही संसार के विषयों से ऊपर हो जाता है। संसार में जो सुख बुद्धि है अच्छा लगता है उसका फीकापन उसके नश्वरता उसके दुख का ज्ञान हो जाता है किस प्रकार हम इस संसार में मूर्खता बस पड़े हुए हैं। और फिर अपने स्वरूप का ज्ञान होता है भगवान के विषय में ज्ञान होता है। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग का व्याख्या जो नवधा भक्ति के रूप में किया गया है उसको एक रूप में समेट रहे हैं कि वह भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से जो प्राप्त होती है वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति के नौ प्रकार हैं लेकिन नौ में सबसे पहले श्रवणम रखा गया भगवान के विषय में सुनना। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं कि धर्म का सम्यक रूप से अनुष्ठान किया जाए खूब बढ़िया से, और वह धर्म का आचरण यदि भगवान कृष्ण की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पाया तो सारा धर्मानुष्ठान केवल परिश्रम है। धर्म स्वनुषित पुनसम विश्वक्सेन कथा सुजत नोत्पादे यदि रतिम समय वही केवलम। कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति के 9 प्रकार हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रकार है श्रवण, भगवान के विषय में सुनना भगवान की कथा, उनके विषय में सुनना और उसका वर्णन करना। कथा सुखा मतलब भगवान के कथा में सुनने में और वर्णन करने में रुचि अगर उत्पन्न नहीं कर पाया धर्माचरण तो सब बेकार है। खूब बढ़िया से यज्ञ चालू किए और यज्ञ में जो कुछ सामग्री चाहिए खूब जुटा लिए, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का पाठ कराए, हवन कराए, और बहुत अर्थ खर्च हुआ, बहुत पैसा लगा, कई महीना के आयास के बाद यज्ञ किसी तरह संपन्न हो गया। लेकिन उस यज्ञ करने के बाद भगवान के लीला कथा सुनने में रुचि नहीं उत्पन्न हो पाई, कथा के प्रति, भगवान के लीला के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, तो सारा यज्ञ का जो भी क्रिया की गई वो सब बेकार है। श्रम है वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ हाथ नहीं लगा। इसी प्रकार और भी धर्म के आचरण हैं, ऐसे तीर्थों में घूम घूम कर दर्शन करना, स्नान करना, चारों तरफ से घूम आए लेकिन भगवान के कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हुई। कथा की रुचि तो बहुत ऊपर का विषय है, जो अपने जीवन में कुछ गलत आदत है वो भी नहीं छूट पाया। कई बार हम लोग सुन चुके हैं महाराज श्री कहते हैं कि मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी फिर पाजी के पाजी, क्या फायदा हुआ उसे। जीवन में बहुत तीर्थ किए, बहुत घूमे, लेकिन जो गलत वासना है, गलत आदत है वो नहीं छूट पाया। यह तो एकदम नीचे की स्थिति है, सब कुछ करने के बाद भगवान की कथा के प्रति इंटरेस्ट नहीं हुआ, रुचि नहीं उत्पन्न हुई, तो केवल परिश्रम हुआ, श्रम केवल बेकार चला गया। जैसे किसान लोग खेती करते हैं, समय से बीज डाल दिए, रोपनी भी किए, पानी लगाए, खाद लगाए, सब कुछ किए, इसके बाद समय पर जब धान को फूटना चाहिए, होना चाहिए, उस समय कोई रोग लग गया, सब खत्म हो गया, तो किसान का सारा परिश्रम बेकार चला गया। जो 2-3 महीना प्रयास पूर्वक किया वो सब बेकार चला गया, केवल परिश्रम हुआ है। भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि वास्तव में दुनिया के और भी धर्म के जो साधन हैं, बहुत से साधन हैं, मुख्य रूप से भगवान के विषय में, संसार के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, उसको छोड़ करके, दूर से छोड़ करके केवल भगवान के भक्तों के मुख से निकली हुई कथा के प्रति जो इंटरेस्ट पैदा कर लेता है, उसी को सुनने में जो जीवन की सार्थकता समझता है, और कहां अपने स्थान में स्थित होकर के वह व्यक्ति अपने कान के द्वारा भगवान की लीला कथा को जो ग्रहण करता है और अपने इंद्रियों के द्वारा नम्र भाव से भगवान की कथा को स्वीकार करता है, वह भगवान अजीत को भी जीत लेता है। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंतएव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्राजसो जित जितो व्यसितय त्रिलोक्याम। वह व्यक्ति जो दूर से ज्ञान के प्रयास को, ज्ञान के प्रयास, संसारिक ज्ञान की बात तो छोड़िए, जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि है, उसके प्रयास को भी छोड़कर कहते हैं उसकी आलोचना। जीव गोस्वामी तो इस श्लोक में कहे हैं कि उस ब्रह्म चिंतन आदि ज्ञान को भी छोड़कर केवल भगवान के लीला कथा को जो सुनता है वह व्यक्ति उस प्रयास को छोड़कर कि क्या क्या इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, इसका विस्तार किस रूप में हुआ, वो ब्रह्म क्या है, क्या उनकी स्थिति है, बहुत बहुत चिंतन है, तरह तरह के वेदांत विचार है, सबको छोड़ करके जो केवल भगवान की लीला कथा को सुनता है अपने जगह पर जहां है वहीं साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई कथा को सुनना ही जीवन बना लिया है, बिना कथा के नहीं रह सकता, जीवन जीता है, जीवन धारण करता है कथा के द्वारा ही, कथा सुनकर ही वह जी सकता है, बिना कथा के नहीं रह सकता, वह व्यक्ति भगवान को अपने वश में कर लेता है। अजीत को, जिनको जीतना बड़ा कठिन है, उस भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। और श्रम ये वही केवलम की पुष्टि ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनः। ते कि जो सुनने के द्वारा भक्ति प्राप्त की जाती है, श्रवण भक्ति, उसके उसको छोड़कर भक्ति श्रवण के द्वारा जो भक्ति की जाती है, श्रुति के द्वारा सुन करके श्रेय श्रुति, उस श्रवण के माध्यम से जो भगवान की लीला कथा प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको छोड़कर जो केवल ज्ञान के प्रयास करता है या दूसरा कोई प्रयास करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वह तो केवल परिश्रम करता है, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। उदाहरण देते हैं जैसे धान के भूसी को, जो आप राइस मिल में देखे होंगे, चावल निकल जाता है और भूसी बाहर पड़ा रहता है और वो देखने में एकदम धान जैसा लगता है कि भीतर का चावल निकल गया है, और कोई व्यक्ति अनजान बस उस भूसी को ही लेकर के उसमें से चावल प्राप्त करना चाहे और उसको उखल में जैसे तैसे कूटे और कूट कर चावल निकालना चाहे तो वह चावल नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके अंदर तो चावल है नहीं, बल्कि उसको कूटने से उसका हाथ पैर में दर्द हो सकता है लेकिन चावल नहीं प्राप्त हो सकता। केवल क्लेशल, केवल क्लेश देने वाला है और कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति जो श्रवण के द्वारा प्राप्त की जाती है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वश में हो जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्मा जो उनका नित्य स्वरूप है, नित्य अंश है, वह अपने आनंद में हो जाता है, इससे आत्मा की सम्यक प्रसन्नता लाभ हो जाता है। तो यही शास्त्रों का सार तत्व है और सबसे बड़ा साधन है जो सुत गोस्वामी इस निर्णय पर आए हैं कि भगवान अधोक्षज की भक्ति की जाए, और यह भक्ति बिना हेतु के होना चाहिए, अहेतु की भक्ति। हेतु का अर्थ है कुछ बदले में चाहना, जीव के अंदर विविध प्रकार की वासना है विषयों को भोगने के लिए, और उसको प्राप्त करने के लिए जीव प्रयास करता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता है। तो जैसे कहीं नौकरी करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है वो कुछ पैसा मिलेगा, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा है, उसके पीछे कारण है कि उसका कुछ हेतु है, पैसा चाहिए, और इस हेतु से भर कर वह प्रयास करता है। और जो हेतु है जीव के अंदर, जो वासना है, वह सबसे बड़ा दोष है जीव का, यही मल है, और इन वासनाओं से भर करके प्रेरित होकर के व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है और इससे सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि ये वासनाएं पूरा होने वाली है नहीं। और जब भगवान की भक्ति किया जाता है बिना कारण के, बदले में विषय सुख नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, चैतन्य चरितामृत में आया है कि जब कोई भगवान या किसी से प्रेम करता है और उसके पीछे अपने इंद्रिय जनित सुख है, भावना है, तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं, काम कहते हैं। निजे इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको काम कहते हैं। और कृष्णेर इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। अपने इंद्रियों को सुखी करने की वहां कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया जाता है, वह है अहेतुकी, वह है प्रेम। और इस अहेतुकी भक्ति को करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ जो भक्ति कहा गया है, सवई पुनसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, तो भक्ति साधन के रूप में भी है और साध्य भी है। इसी भक्ति को प्रारंभ में साधन के रूप में कहा गया है। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यह एक प्रयास है, एक साधन है। और जब इसी को करते करते अब इसके बिना रह नहीं सकते हैं तो यही साध्य है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब साधु पुरुषों का संग होता है तो हमारी महिमा से भरी हुई कथाएं होती है, और वह कथा हृदय और कान को बड़ा मनोहर लगता है, चित्त को पवित्र करता है, चित्त के इंटरेस्ट को बढ़ाता है, बढ़ाती है वह कथा। और उससे होता क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, रति, और बाद में भक्ति प्राप्त होती है। तो जहां वहां भक्ति की बात जो कह रहे हैं भगवान कपिल देव, प्रेम के विषय में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा तत्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहते हैं कि क्रम से भक्ति प्राप्त हो जाती है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो वहां भगवान कपिल देव का कहना है कि जब व्यक्ति साधु पुरुषों के मुख से सुनता है, साधु पुरुषों का संग प्राप्त करता है, और संग प्राप्त मतलब आसक्ति पूर्वक, संगम आसक्ति अर्थ किया गया है, साधु पुरुष ही उसको अच्छा लगते हैं, उनके साथ बैठना, उनके मुख से कृष्ण कथा सुनना, जब आसक्ति पूर्वक कृष्ण कथा सुनने लगता है तो वहां उस सत्संग में, साधुओं के सभा में हमारी वीर्य, हमारी महिमा से भरी हुई कथा होती है, संसारिक चर्चा नहीं होती है। और वह कथा अपवर्ग वर्तमानी है, वह अप्राकृत अलौकिक दिव्य धाम के तरफ ले जाने वाली रास्ता प्रस्तुत करती है। और इस तरह से यह अपवर्ग वर्तमानी जब कथा सुनते हैं तो यह कान को और हृदय को बड़ा मनोहर लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें चित रम जाता है, और धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा उस विश्वास का नाम है, एकदम कंप्लीट निष्ठा हो जाए कि भगवान ही हमारे आराध्य हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान की लीला कथा हमारा जीवन है, और इसी में हमारा हित हो सकता है, दुनिया के जो भी कार्य व्यापार है वह हमारा हित नहीं कर सकता है। इस तरह के सुदृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, और यह श्रद्धा उत्पन्न होती है साधु पुरुषों के मुख से सुनने से। और श्रद्धा के बाद रति, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, और वही अंत में भक्ति अनुक्रम, इस क्रमशः भक्ति क्रमशः प्रेम को प्राप्त करा देते हैं। तो भक्ति का अर्थ साधन और साध्य दोनों है। तो यहां भक्ति को प्रेम कहा गया है, प्रेम प्राप्त कर लेता है, भगवान अधोक्षज की प्रेम प्राप्त कर लेता है, और वह प्रेम प्राप्त होता है भगवान की कथा के द्वारा। भगवान की कथा सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो यहाँ धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुज नोत्पादय यदि रतिम श्रम वही केवलम। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन में यह प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान की कथा के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, भगवान की लीला कथा को गाएं और उसी को चिंतन करें, उसी को श्रवण करें, और भगवान के लीला कथा से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, अध्ययन करें, जैसे भी जब समय मिले इसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो इससे आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाती है, और यही शास्त्रों का सार तत्व है, और सूत गोस्वामी इसी को अपने मनीषया अपने बुद्धि से विचार करके सिद्धांत दे रहे हैं। यह करना चाहिए, यह बहुत बड़ा साधन है, इसका आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और इससे जीव वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है, इसी में जीवन की सफलता है, यही करना चाहिए। तो इन श्लोकों की व्याख्या तो बहुत है, बहुत विस्तार से है, महाराज श्री के मुख से हम लोग फिर सुनेंगे कल। तो आप लोगों के चरणों में प्रार्थना है, आप भगवान की भक्ति कीजिए और धीरे धीरे इस रूप में अपने जीवन को ढाल दीजिए कि बिना भक्ति किए कुछ भी अच्छा ना लगे। और वास्तव में यह संसार अच्छा लग रहा है, यह हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है, और विभिन्न प्रकार के मन में प्लानिंग है, योजना है, यह अपने साथ बहुत बड़ा धोखा है जो संसार के साथ हम कुछ भी व्यवहार बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों की एक स्थिति है कि धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते स्वाभाविक निष्कामता आ जाती है, वैराग आ ही जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब भगवान की भक्ति की जाती है तो वह निष्काम हो जाता है, किसी प्रकार की कामना संसारिक कामना नहीं रहती। संसारिक कामना का मतलब इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं रहती। निजे इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की वासना नहीं रह जाती। और वास्तव में हम अपने इंद्रियों को तृप्त कर भी नहीं सकते हैं, जो अपने बुद्धि से जो भी कर रहे हैं उसे इंद्रियां तृप्त हो कहां रही है। विविध प्रकार के टेस्ट, विविध प्रकार के स्वाद खाते हैं, लेकिन खाने की वासना बनी ही रहती है। वास्तव में सबसे बड़ा सुख उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रह जाए दूसरा, और उसके बिना फिर रहा न जा सके। और यहाँ के सुख की तो स्थिति यह है कि जिसको हम प्राप्त करते हैं, खाते हैं, ये और भी विषय, उसको प्राप्त करने के बाद ऊबन महसूस होने लगता है। एक ही चीज अगर रोज रोज पूरी हलवा मिठाई खिलाया जाए तो एक दो टाइम के बाद ही आदमी कह देगा ना रोज रोज नहीं, अब नहीं, टेस्ट बदलना चाहिए, और बदल कर दूसरा चीज खाता है उससे भी उबने लगता है। इसी प्रकार संसार के अन्य सभी विषय हैं, सभी विषयों से लालसा है, प्राप्त करने के बाद उबन है, लेकिन यह सुख नहीं देता है, इससे हम सुखी हो नहीं पाते हैं, केवल कामना कामना कामना। और वास्तव में जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं श्रवण के माध्यम से, तो भगवान जब प्राप्त होते हैं उनकी लीला कथा हमारा जीवन बन जाता है, तो बिना उसके हम रह नहीं सकते, यह विशेषता है। वह ऊबन नहीं महसूस होने देता, और ज्यादा और ज्यादा, और जितना ज्यादा कृष्ण कथा सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, उतना ही अपनी कमी महसूस होती है, हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जब महाराज परीक्षित के सामने भागवत का विज्ञापन किए सुखदेव गोस्वामी कि आपको भागवत सुनाऊंगा, तो उनके मन में बहुत ग्लानि होने लगी कि जीवन बिता दिया मैं, भागवत सुना ही नहीं, अब क्या किया जाए, 7 दिन केवल शेष है। तो उनको आश्वासन देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आप चिंता मत कीजिए, 7 दिन अभी काफी टाइम है, आप मन को एकाग्र करके कथा सुनिए। खटवांग महाराज केवल 2.5 घड़ी में कृष्ण को प्राप्त कर लिए थे, अभी तो आपको 7 दिन बाकी है। बरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे जतः, तो कहते हैं एक क्षण काफी है अगर इसको श्रेय के लिए रखा जाए तो। तो इस प्रकार उत्साहित कर रहे हैं। तो जब तक जीव के अंदर कामना है और कामना के अनुसार प्रयास है प्राप्त करने के, तब तक बेचैनी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, जो भोग चाहता है, विषय चाहता है, सिद्धि चाहता है, संसार के चीजों को चाहता है, वह अशांत रहेगा ही। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और कृष्ण भक्त कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं इसलिए कोई कामना नहीं, सारी हृदय की कामना गंदगी समाप्त हो जाता है। तो यह संसार का त्रास, संसार के भोगने की लालसा बहुत बड़ा मल है, बहुत बड़ा दोष है जीव का, और यह दोष समाप्त होता है भगवान की भक्ति से। यही उपाय भी है और यही उपाय के द्वारा प्राप्त होने वाला वस्तु भी है, साधन और साध्य भगवान की भक्ति है। तो इस भक्ति को करना चाहिए, और यद्यपि भक्ति के अनेक प्रकार हैं, लेकिन सूत गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं और अंत भी इसी में कर रहे हैं। चारों तरफ भागवत में पूरा भागवत भरा हुआ है, श्रवण श्रवण श्रवण, सुनना चाहिए सुनना चाहिए, सुनिए सुनिए भागवत सुनना चाहिए। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी के इस संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए और भगवान के विषय में सुनकर बोलकर और भगवान के गुण लीलाओं का चिंतन करके अपने जीवन को सार्थक कर देना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।